आज इंशाल्लाह तआला हम आयत दुआ नंबर 10 करेंगे, पेज नंबर 17 के मिडल में। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फौजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। दम ज़रिया इलाज, इसमें से जादू हो जाने के बाद की दुआएं हम सीख रहे हैं, किस तरह से इलाज किया जाएगा। दुआ नंबर 10 है, पेज नंबर 17। हम पहले मिल के पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह इसको समझेंगे। आइए पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहि يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين. چلیے آئیے اس کا ترجمہ لکھتے ہیں لفظ پہ لفظ. بسم اللہ، سات نام اللہ کے. یبری کا، وہ بری کر دے آپ کو، یعنی آپ کو اس چیز سے دور کر دے، یعنی اس بیماری سے جس میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بری کر دے، بے نیاز کر دے. و اور من کلی، ہر سے دا ان بیماری. اب دیکھیں آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ آج بیماری کا یاد سمجھ آ گیا ادھر، دا ان، دال الف اور حمزہ دیکھ لیں تو دا ان کہتے ہیں بیماری کو. وَمِن كُلِّ دَاعٍ، اور ہر بیماری سے. يَشْفِيكَ، تجھے شفا دے. وَا اور مِن شَرِّ، شر سے. حَاسِدٍ، ہر حسد کرنے والے کے، یعنی حسد کرنے والے کے شر سے. اِذَا حَسَد، جب وہ حسد کرے. و اور من شری، شر سے. کلی، ہر. ذی عینن، آنکھ والے. اب ذی عین ویسے لفظی ترجمہ تو آنکھ والا ہے، لیکن یہاں عین سے مراد نظر بد، یعنی ہر بری نظر سے، یعنی اس کے شر سے اللہ آپ کو بچا لے. پوری آیت کے ساتھ دیکھتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا. بسم اللہ یبری کا، سات نام اللہ کے، وہ آپ کو بری کر دے. من کل دائن، ہر بیماری سے. یشفی کا، آپ کو شفا دے. و من شر حاسدن، اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے. اذا حسد، اذا حسد، جب وہ حسد کرے. وَمِن شَرِّ كُلِّ ذِي عَيْنٍ، اور ہر نظر والے کے شر سے. کیا پتہ چلا اس میں؟ چند چیزوں کو دیکھے گا. پہلی بات تو بسم اللہ ہی ہے، پچھلی دعا میں ڈیٹیل سے بات ہو چکی. اللہ کا نام بہت بڑا ہے، اور ہم ہر کام میں جب اللہ کے نام کو لے آتے ہیں تو وہاں خیر تو ویسے ہی شروع ہو جاتی ہے. یبریکا کا لفظ میں جو بری ہے نا، یہ وہی لفظ ہے جس میں قرآن پاک کی سورت برات ہے، سورت توبہ، جس کا دوسرا نام سورت برات بھی ہے. کیا کہتے ہیں ہم اس کو؟ براتم. یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ اور میں اردو میں شب برات بھی کہتے ہیں. برا کہتے ہیں بری. میں آپ سے بری ہوں، اردو میں آپ لفظ بولتے ہیں میں آپ سے بری ہوں. کیسے بری ہوں؟ اس بات سے کہ آپ جو کر رہے ہیں میرا پھر اس سے کوئی تعلق نہیں، آئی ایم ناٹ ریسپانسیبل کے معنوں میں. ٹھیک ہے؟ تو یعنی اللہ آپ کو بری کر دے. کس چیز سے بری کر دے؟ یعنی یہ جو آپ کو تکلیف لگی ہے، جو آپ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بے نیاز کرے. اب بری کرنے میں ایسے کہتے ہیں نا، مجرم بری کر دیا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا. تو میں اس لفظ کو جب پڑھ رہی تھی ابھی، تو مجھے کیا لگ رہا تھا؟ اللہ آپ کو بے نیاز کر دے، یعنی اگر بیماری ہے بھی نا تو آپ کو محسوس نہ ہو. یہ معنی ہے، آپ اتنے سینسٹیو نہ ہوں کہ اس بیماری کو محسوس کریں. اگر درد ہو رہا ہے کوئی، تو اللہ تعالیٰ اس درد کی شدت سے آپ کو بے نیاز کر دے. یہ معنی ہے، کیونکہ آگے دوبارہ آ رہا ہے نا، وہ من کل دائن یشفیکا. صرف اس وقت جو بیماری ہے وہ نہیں، بلکہ اور بھی جو بیماریاں ہیں اللہ آپ کو اس سے بھی شفا دے دے. اور من شر حاسدن، और हसद करने वाले इजा हसद, इस लफ्ज पे मेरी बहुत तवज्जो गई है अभी दुआ पढ़ते हुए, क्योंकि सूरत फलक में भी यही आता है, मिन शर्रि हासिदिन इजा हसद। अच्छा, यहाँ सिर्फ हासिद के साथ क्यों कहा कि इजा हसद, आगे ये क्यों नहीं कहा कि मिन शर्रि कुल्ली जी ऐनिन, हर आंख वाले के शर से जब वो आपको देखे। तो इससे मुझे कुछ फीलिंग ऐसी आई कि हसद करने वाला जब आपसे हसद करता है ना, फिर नुकसान देता है। हर वक्त तो नहीं कर रहा होता ना, हासिद तो वो कहला दिया, लेकिन जब वो हसद करेगा तो फिर नुकसान होगा। ये ऐसे ही कि जैसे चूल्हा है ना, सारा दिन घर में होता है, हमें उससे कोई फिक्र नहीं होगी, लेकिन जब चूल्हे में आग जलती है तो फिर उसका शर हो सकता है ना, आग लग सकती है, खाना जल सकता है, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हसद भी एक आग ही होती है बेसिकली। जब एक बंदा किसी से हसद करता है तो मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त उसका बुरा चाहे, और दूसरी बात ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि वो गैर हो, वो अपना भी होता है। किसी अपने का भी हसद जब होता है तब आपको नुकसान देता है, ये मुराद है। तो गोया कि हसद करने वाले के शर से अल्लाह हमें बचाए, आपको बचाए, वमिन कुल्ली ज़ी ऐनिन, और हर नज़र वाले के शर से। आप देखिए अगली अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटेल से, वहाँ नज़र की बात तो खुद ब खुद आनी ही है, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि आंखों से भी रेस निकलती हैं। निगाहों के ज़रिए से मक्का वाले नबी सल्लम को पिछलाना चाहते थे। अगर आप सूरत नून, जिसका दूसरा नाम सूरत कलम है, उसकी आखिरी आयतें भी देखें तो अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात की खबर देते हैं कि ये आपको अपनी नज़रों से पिछलाना चाहते हैं। यानी आपको घूर घूर कर क्यों देखते थे, इस वजह से कि आप पजल हो जाएं और आप जो काम कर रहे हैं वो ना करें। ये मक्का वालों की बात है, हर जगह तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कहने का मतलब है कि जब कहीं भी आप बैठे हों और कोई आपको घूर कर देखे तो आप मिसफिट फील करेंगे। आप एयरपोर्ट पे हों और उनका कोई एक सिक्योरिटी गार्ड आपको देखना शुरू हो जाए, इधर से आए देखे, उधर से आए देखे, तो आप कॉन्शियस हो जाएंगे ना। आप बस में बैठे हुए और बस में बैठा हुआ कोई और मुसलसल आपको घूरने लगे तो आपको बुरा लगेगा ना। इसी तरह से यहाँ ये कह दिया गया कि नज़रों के शर से भी बचा। अच्छा, यहाँ आमतौर पे तो बुरा ही शर नज़रों का होता है ना, लेकिन कुछ और नज़रें भी होती हैं। जब हम बहुत सच समर के बाहर निकलते हैं, या जब एक औरत वो पाबंदियाँ नहीं कायम रखती जो कि अल्लाह ने उसको दी हैं, उसके रसूल ने सिखाई हैं, तो फिर कई नज़रें भी तो उस पर उठती हैं ना। गंदी नज़रें, मर्दों की नज़रें, लड़कों की नज़रें, औरतों की नज़रें, यानी वो चीज़ें जो एक इंसान को फिर किसी बड़े फितने में डाल दें। तो ये बहुत वसी मानी है, ये बहुत वसी लफ्ज़ है कि जिसको अगर आप देखें तो जिससे ये पता चलता है कि सिर्फ नज़रें बद नहीं है, ये अल्लाह के नबी की देखिए बात है। ये नहीं कहा कि मैं नई नहीं लामा नज़र लग जाने वाली, बल्कि हर नज़र। तो हमें कई दफ़ा प्यार की नज़र लगती है, ये जो मोहब्बत होती है वो भी तो कहते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट क्या कह लें। तो हर नज़र से बचा। आप देखिए कि हमारा दीन इतना खूबसूरत है, आप ये नया लफ्ज़ है ना, बाकी चीज़ें तो हमने पिछली दुआ में ऑलमोस्ट कर ही ली थी, कि हर उस शर से भी बंदे को बचाता है जिधर कभी मेरा आपका ध्यान भी नहीं गया होगा। एक लफ्ज़ होता है कि आप बीमार हो जाएं फिर डॉक्टर पे चलेंगे, और दूसरा क्या है कि आप बीमार हो ही ना, कौन सा तरीका इलाज बेहतर है। मसलन आप देखिए कि आप किसी जगह देखते हैं तो एक पहाड़ी है ना, वहाँ कोई खड्डा पड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है कि जो उसके करीब ही जाकर तो एक बिल्डिंग बनानी शुरू कर दे। कोई नया बंदा देखने वाला पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहा है कि यहाँ हड्डियाँ जोड़ने वाला हॉस्पिटल बनाते हैं। भाई क्यों, इसकी क्या ज़रूरत है? कहते हैं देखो ना कि यहाँ घड़ा है तो लोग जब यहाँ से गुजरेंगे तो गिरेंगे ना, तो जब वो गिरेंगे तो उनकी हड्डियाँ तो टूटेंगी ना, तो फिर हड्डियाँ टूटेंगी तो हम उसका इलाज करेंगे। अच्छा, कोई बंदा होगा कहेगा वाह कितनी दूर गवर्नमेंट है, कितना लॉन्ग साइटेड है और बड़ा फ़ायदे की बात है। एक दूसरा वो कहेगा अल्लाह के बंदो, तुम हॉस्पिटल जो बनाने लगे हो सिर्फ इसलिए कि यहाँ से लोगों ने गिरना, तुम इस घड़े को क्यों नहीं बंद कर दे? जितने पैसे लग के हॉस्पिटल बनना और हड्डियाँ टूटनी है, और ये कोई बड़ी खुशी की बात है कि हड्डियाँ टूटनी और तुम जोड़ो, तुम उसका 1% लगा कर इस घड़े को बंद कर दो। कौन सा मशवरा अक्लमंदी का? इस्लाम का जो मिजाज है ना, ये दूसरा वाला है, ये समझिएगा बात को। वेस्ट का जो स्टाइल है जिससे हम बहुत इंप्रेस होते हैं ना, यहाँ क्राइसिस सेंटर है या बरने वन है या औरतों को मदद देते या ये स्पोर्ट वो स्पोर्ट, वो दूसरा पहला वाला है। वहाँ वो सोर्सेज या वो रिसोर्सेज नहीं रोके जाते, सदे बाप नहीं किया जाता उन खराबियों का, उन वजूहात का जिनसे घर टूट रहे हैं। हाँ, टूटने की सूरत में फुल सपोर्ट करेंगे, बात समझे? इस्लाम क्या कहता है, पहले से वो सारे दरवाजे ही बंद कर दो कि जिससे खराबियां पैदा होती हैं। अब यहां बात की मिन कुल्ली जी आईनिन, आंखें तो हैं लोगों की, मेरी भी आपकी भी, हम बाहर भी जाते हैं। इस्लाम क्या कहता है, युतनी नाले हिन्न मिंजला भी हिन्न, तुम अपने ऊपर एक बड़ी ढीली ढाली चादर डाल लो, सर से लेकर पांव तक जिस हद तक छुप सकते हो छुप जाओ, तो तुम्हें किसी की नजर ही नहीं लगेगी। बात समझ गए? तो मिन कुल्ली जी आईनिन से हमें नजरों से भी बचना है, हर तरह की इंट्रैक्शन से बचना है। मर्दों से बात करते वक्त आंखों में आंखें डालकर देखेंगे, डेफिनेटली फीलिंग्स पास होती हैं। तो बहरहाल ये एक साइड पॉइंट था, क्योंकि हम अक्सर इन चीज़ों पे सोचते नहीं हैं, लेकिन आज बहुत सारे शरूर के अंदर एक शर नज़रों का शर भी है। जस्ट लाइक कहीं पढ़ने बैठे, कहीं जॉब पे गए, कहीं गए, नज़रों से नज़रें मिली, बात गड़बड़ हो गई, तो वह मीन कुल्ली जी आइन इन में सब कुछ आता है। क्योंकि इसमें ना तो नज़र बद का जिक्र है, ना इसमें कोई और है कि हर नज़र वाले के शर से। मैं तो अच्छी नीयत से घर से निकली, मजबूरी में निकली, पूरी कोशिश के साथ भी अल्लाह के हुक्म को पूरा करके निकली, लेकिन किसी बुरे की नज़र मुझ पे ना पड़ जाए। फिर इसी तरह देखिए, किसी की नज़र चोरी की नज़र हो सकती है, कोई नज़र डालता है आपके ऊपर, आपकी कोई चीज़ चुराना चाहता है। तो किस्सा मुख्तसर यह है कि ये दुआएं मुझे आपको हर मुमकिन फितने से बचाती हैं। ठीक है, अब इस शौर के साथ ज़रा मिल के पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ दोहरा लें आप भी। बिस्मिल्लाहियुब्रीका व मिन कुल्ली दा इन यशफीका व मिन शर्री हासिदिन इजा हसद व मिन शर्री कुल्ली ज़ी ऐनिन। ठीक है शाबाश, कुछ याद हो गई है, मुश्किल तो नहीं है ना? अब देखें कि ये दुआ और इससे अब अगली दुआ में सिर्फ एक दो लफ्ज का फर्क है। चलिए करते हैं, दुआ नंबर 11 पेज नंबर 17। बिस्मिल्लाही अरकीका
अरकीका
मिन कुल्ली शयिन
मिन कुल्ली शयिन
युजीका
युजीका
मिन हसद
मिन हसद
मिन हसदी
मिन हसदी
हासिदिन
हासिदिन
व मिन कुल्ली
व मिन कुल्ली
ज़ी ऐनिन
ज़ी ऐनिन
अल्लाहु
अल्लाहु
यशफीका।
यशफीका
बिस्मिल्लाही
बिस्मिल्लाही
अरकीका
अरकीका
मिन कुल्ली शयिन
मिन कुल्ली शयिन
युज़ीका
युज़ीका
मिन हसदी
मिन हसदी
हासिदिन
हासिदिन
व मिन कुल्ली
व मिन कुल्ली
ज़ी ऐनिन
ज़ी ऐनिन
अल्लाहु
अल्लाहु
यशफीका।
यशफीका।
लिखिएगा इसका लफ्जी तर्जमा। बिस्मिल्लाही अल्लाह के नाम से अरकीका मैं तुझे दम करता हूँ, मिन कुल्ली शयिन हर चीज से, युज़ीका जो तुझे तकलीफ दे, मिन हसदी हसद से, हासिदिन हसद करने वाले के, वह और मिन कुल्ली से, मिन से कुल्ली हर, जी वाला, ऐनिन आंख यानी हर आंख वाले के, अल्लाहु अल्लाह यशफी का शिफा दे तुझको। जुमलों की सूरत में देखते हैं, बिस्मिल्लाही अरकीका अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ, मिन कुल्ली शयिन यूजी का हर उस चीज से जो तुझे तकलीफ दे, मिन हसदी हासिदिन यानी हसद करने वाले के हसद से, व मिन कुल्ली ज़ी ऐनिन और हर आंख वाले की यानी हर नजर वाले से, अल्लाहु यशफी का अल्लाह तुझे शिफा दे। आप देख रहे हैं कि दुआ नंबर 11, 10 और 9 एक ही मजमून के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इन दो को याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि जब मिलते जुलते लफ्ज होते हैं ना तो भूल जाता है। आप देखिए इसमें से कॉमन्स ढूंढिए, यानी मैं ऐसी दुआएं कैसे याद करूंगी, जब मैं पढ़ती थी या जो भी मैंने इवन साइंस भी पढ़ी तो मैं अपने आगे एक कॉपी पेन रखती थी, कोई चीज़ याद करती थी ना तो उसको साथ ही लिखती थी फिर उसके बाद। तो मैं क्या करूंगी, इन तीनों दुआओं को इकट्ठा याद करूंगी। बिस्मिल्ला 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 बिस्मिल्ला, तीनों में बिस्मिल्ला ना, आप पहले पेज पे बिस्मिल्ला लिख लिया, दूसरे पे बिस्मिल्ला, तीसरे पे, तीनों का बिस्मिल्ला मुझे याद हो गया। फिर दुआ नंबर 9 का पढ़ूंगी, अरकीका 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 मिन कुल्ली शयन मिन कुल्ली शयन जूजी का, अरकीका मिन कुल्ली शयन जूजी का, जहाँ तक एक जुमला बनता है ना, जहाँ आप कहते हैं कि बात समझ आ जाती है, अरकीका मिन कुल्ली शयन यूजी का, अरकीका मिन कुल्ली शयन यूजी का। अब बात पूरी होगी ना, मैं इसको जाकर पहली दुआ यानी दुआ नंबर 9 के आगे फिर अपने जहन से मैं लिखूंगी, बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शयन यूजी का। फिर आप देखिए कि मैं कहूंगी, मैं अब जरा दूसरी दुआ के आगे देखू वहां क्या है, तो वहां बिस्मिल्ला के बाद क्या था, युबरी का युबरी का युबरी का। मेरे जहन में फौरन आ जाएगा कि वहां रकीका था तो इधर युबरी का है, युबरी का। वा और मिन कुल्ली दा इन जशफी का, ये नया लफ्ज है, वा और मिन से कुल्ली दा इन बीमारी, यशफी का वो आपको शिफा दे, युबरी का व मिन कुल्ली दाएं यशफी का, युबरी का व मिन कुल्ली दाएं यशफी का। फिर मैं इसको लिख लूंगी वहां जाके, बिस्मिल्लाही युबरी का व मिन कुल्ली दाएं यशफी का। फिर मैं दुआ नंबर 3 पे आऊंगी तो मुझे हैरत होगी कि वो तो मुझे पहले ही आती है, क्यों आप देखिएगा, दुआ नंबर 9 और दुआ नंबर 11 का आधा हिस्सा सेम है। वहां मैंने क्या याद कर लिया था, बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शय यूजी का। अब जब मैं इसको याद करने आई तो बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शय यूजी का, तो मुझे तो याद है, मैं फटाफट झट से इसको भी लिख लूंगी तीसरी दुआ में, तो मुझे तीनों दुआएं आधी आधी याद होगी, जिसको हम अपनी जुबान में कहते हैं ना, कच्चा पक्का कर लूं पहले फिर खाना बनाएंगे, हैं। अब क्या हुआ, ये 3 हो गई। अब मैं वापस जाऊंगी दुआ नंबर 9 पे। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या है, व और मिन कुल्ली शयिन नफसिन व मिन शर्री कुल्ली नफसिन व मिन शर्री कुल्ली नफसिन। तो मैं सोचूंगी, अच्छा पहले मैंने हर तकलीफ दे चीज से पनाह मांगी थी, अब मैं हर नफ्स के, नफ्स का शर यानी एक नई चीज आ गई, व मिन शर्री कुल्ली नफसिन व मिन शर्री कुल्ली नफसिन व मिन शर्री कुल्ली नफसिन। मेरे लाशऊर में ये बात बन गई है कि दुआ नंबर 9 में दूसरी चीज नफ्स का शर है। अब मैं इसको भी लिख लूंगी अपनी नोटबुक पे जुबानी, व मिन शर्री कुल्ली नफसिन। मैं अब देखूंगी भला दुआ नंबर 10 में दूसरी क्या चीज थी, क्योंकि पहली क्या थी, हर बीमारी से अल्लाह आपको शिफा दे, तो दूसरी चीज क्या, व मिन शर्री हासिद निजा हसद व मिन शर्री हासिद निजा हसद व मिन शर्री हासिद निजा हसद। तो यहां मैं कहूंगी, अच्छा यहाँ हसद की तकलीफ है। अब मैं जब इसको लिखूंगी ना, तो जब मैं दुआ 11 पे आऊंगी तो मुझे वो पहले ही पता है, वहां भी आप देख रहे हैं कि दुआ नंबर 10 की जो दूसरी चीज है वो इसकी इधर मिलती है, यानी दुआ नंबर 11 और 9 का शुरू मिलता है और दुआ नंबर 10 और 11 का सेकंड पार्ट मिलता है, बिस्मिल्लाही अरकीका मिन कुल्ली शयइन युज़ीका मिन शर्री हासिदिन मिन शर्री हासिदिन मिन शर्री हासिदिन। सिर्फ दुआ नंबर 2 में फर्क है, इजा हसद का इजाफा है, 3 में वो नहीं है। उसके बाद दुआ का आखिरी समय इधर ऊपर का भी याद कर लूंगी, औइन हासिदिन अल्लाह यशफीका। यानी आप देखेंगे कि जब मिलती जुलती दुआएं होती है ना, तो उसको पहले चेक करें कि इसमें क्या चीज कम है। मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ, सूरत हदीद अगर कभी आपने जिंदगी में याद किया ना, तो उसका शुरू कभी नहीं याद होता, गलती लग जाती है, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। फिर उसके बाद अगली बार बार लगता है तकरार है, वल्लाहु वल आखिर, फिर क्या वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर। मैंने उसको भी ऐसे याद किया था, तोड़ के टुकड़ों में जो चीज जहन में उलझन डालेगी ना, उसको पहले से पढ़ लें, ठीक है। तो अब ये तीसरी जो दुआ है, इसका लफ्जी तर्जमा हमने देख लिया कि अल्लाह के नाम से मैं तुझे दम करता हूँ, तुझे तकलीफ देने वाली हर चीज से यानी हसद करने वाले के हसद और हर नजर वाले से अल्लाह तुझे शिफा दे। तो अब देखिए 11 दुआएं जिसमें हमने अल्लाह तला की पनाह मांगी है, यकीन बस हो तो ये चीजें काफी होंगी बंदे के इलाज के लिए। फिर नीचे एक नोट है आखिर में इसके, वो पढ़ लीजिएगा, जादू नजर लगने जिन्नों के असर और हर तरह की बीमारियों का इलाज इन तआवुज़ात, बोले मेरे साथ तआवुज़ात, फिर बोले
तआवुज़ात,
फिर बोले
तआवुज़ात।
तो ये तआवुज़ात तो नहीं है, इसके ऊपर आप अराब लगा लें बुक में, तआवुज़ात तआवुज़ातुन की जमा, तआवुज़ातुन क्या चीज है, जिससे पनाह ली जाए। उर्दू में लफ्ज सुना है कभी तावीज, वही लफ्ज है, ये वो मुजक्कर है ये मुअन्नस है, तावीज की मिसिस कह लें, हैं तावीजा, हैं नाम ना रख ले अब कोई किसी का के इट साउंड्स गुड, हैं मुआविज नाम होता है, बहरहाल माज भी होता है, ये सब का एक ही रूट है अंदर से ऐन वाज़ाल। तो तावुजात दम और दुआओं से किया जाता है, क्योंकि ये दम अल्लाह सुबहानहू व ताला के हुक्म से जामे और मुफीद है। बाद में जहन में सवाल आता है ना कि हम ये सब पढ़ते हैं, पढ़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमें मिलती हैं। और आप देख रहे हैं जितनी भी दुआएं हमने की हैं 11 की 11 इस टॉपिक के अंदर, सब का रेफरेंस लिखा हुआ है। दुआ नंबर 9 सही मुस्लिम की जिल्द 4 1718 नंबर की हदीस है। फिर दुआ नंबर 10 मुस्लिमी की रिवायत है, 4 सही मुस्लिम जिल्द नंबर 4 1718। और तीसरी दुआ जो ये सही इब्ने माजा की रिवायत जिल्द नंबर 2 में 268 नंबर की है। फर्क बस इतना ही है, जिस चीज का हवाला मिल गया उसको ले लीजिए, जिसका हवाला नहीं मिलता उसको छोड़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं तो पूरी हो गई हैं इस मौजू की। जी आप सईदा जी, बस इसी नियत से देखिए, इनका सवाल ये है कि ये सब में दूसरे के लिए ना युबरी का रकी का है ना, तो हम पढ़ेंगे या फूकेंगे? पढ़ के पास है तो फूक दें, पास नहीं है दूर है तो नियत करके तसव्वुर से कर दें, लेकिन ये उसके लिए अब दुआ के तौर पे दुआ कर सकते हैं। अपने लिए कैसे करें? अपने आप को तू कह ले, ए नफ्स तेरा क्या करूँ मैं। कल बात हुई थी इस पर, ठीक है, कल आप नहीं थे लेकिन कल इस पर बात हो चुकी है, तो अपने आप को भी इसी तरह कह लें। और एक बात याद रखिए, हमेशा याद रखिए, जो चीज़ आप दूसरे को देते हैं ना उसका आपको खुद भी फायदा होता है। अगर मेरे पास खुशबू है मैं खोल के आपको दूंगी ना, तो पहले वो मेरे नाक को जाती है। इसलिए अगर हम ये दुआएं दूसरों के लिए भी पढ़ रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमें भी फायदा देती हैं। जी जी, ये वाहिद के सीगे ना बिस्मिल्लाह रकी का वाहिद है। अब बहुत सारे हैं तो बस इस नियत से जमा आप करें, अगर आपको ग्रामर आती है तो रकी कुम करेंगे, तो जरूरत नहीं है आप सबके लिए जमा के साथ कर दें। एक दफा एक के लिए पढ़ लें, एक दफ़ा में नियत कर लें, दूसरी दफ़ा में दूसरे की कर लें तो भी है। ऐसी चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा कोई आप लाइन खींच के नहीं बता सकते। हमारे दीन की ये खूबसूरती है कि हमें ये नहीं कहा कि एक सीधी लाइन, आपको अगर एक लाइन खींच के कहा जाए कि इसी के ऊपर चलोगे तो मुश्किल होगा ना। दो लाइनें खींच के कहा जा सकता है कि इसके इन बिटवीन चलते जाओ, तो जहाँ जो बात जैसे हालात की हो वैसे कर ले, अल्लाह ताला उसमें मदद करे आपकी। जी आप, और देखिए जो चीज़ दूसरे के पास है और आपके पास नहीं है, इसको हसद नहीं कहते, इसको गिबता कहते हैं। गैन बा तोहा गिबता, उर्दू में इसको रश्क कहते हैं। ये जायज़ है, शर्त एक है कि इसके बाद आप उसकी बुराई ना चाहें और ये कह दें कि अल्लाह ने उसको दे दिया मुझे नहीं दिया। दूसरी बात है कि किसी की कोई चीज़ देखें और आप कहें कि मुझे रश नहीं, अल्लाह जानता है ज़िंदगी में मुझे आज तक ये फीलिंग कभी आई नहीं जिसका मैं आपको एक्सप्लेन करूं। मुझे हमेशा ये लगता है कि मेरे पास दूसरों से ज़्यादा है। इसके लिए आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे बेनियाज कर दे, कि अल्लाह अगर मेरे पास कोई चीज़ नहीं है तो तू मेरे दिल से उसकी ख्वाहिश ही निकाल दे। लेकिन आप भूखे हैं तो फिर ही किसी का खाना देख कर आपको भूख लगेगी ना, तो अगर आप कहें कि मुझे भूख ही नहीं है तो जितना भी अच्छा कोई खाए, इसके लिए बेनियाजी करें और अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला अगर मेरी दुआ कबूल नहीं होनी या मेरे हक में ये चीज़ नहीं है या मुझे ये नेमत नहीं मिलनी तो मुझे इसकी तलब से बेनियाज कर दें। जी हाँ जी, मतलब ये कि आपके अपने दिल में जितना वो दिल भरा होगा ना, सैचुरेटेड होगा, उतना आपको दूसरे की तकलीफ देख के नहीं आएगा। और इसके बहुत सारे ये इस पे पूरा एक पारा है, आप पर सुन लें 2010 का जो दौरे कुरान था उसका पहला पारा ही हसद पे, उसमें मुझे अभी भी याद है वो पॉइंट्स के आपको अगर लगता है कि आपके दिल में किसी चीज़ के लिए हसद आता है तो आप दुआ करें कि अल्लाह मेरे दिल से निकाल दे। और फिर दूसरी ये बात है कि इस बात को सोच लें कि ये चीज़ आज इसके पास है कल नहीं रहेगी, इसको ये तकलीफ होगी, मुझे अल्लाह ने इससे बचाया। जैसे किसी की औलाद है आपके पास नहीं है लेकिन आप देखते हैं कि किसी का बच्चा हुआ और फौत हो गया, अल्लाह सबके बच्चे आके रखे, तो आप कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है उनको तो दे के ले लिया, मुझे तूने दिया ही नहीं, मैं इस पे खुश हूँ। राइट, तो रीजनिंग करें और हमेशा पॉजिटिव सोचें। और सूरह कलम की आयत 51 है जिसका मैंने आज रेफरेंस आपको दिया था ना, कि वहीं यकादुल्लज़ीन कफरु लयुज़लिकूनक बिअब्सारिहिम लम्मा समिउ ज़िक्र वयक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये लोग जो कुफर करते हैं करीब है कि आपको अपनी नज़रों से पिचकार दें जब ये जिक्र को सुनते हैं, यानी कुरान सुनने आते थे बहाने से लेकिन उस वक्त उनके दिल में कुछ और बुगज होता था, हसद होता था, और क्या कहते थे वयकूलून इन्नहु लमजनून बेशक ये मजनू है। जी इधर से आप नसीम जी,
सर जी अगर किसी के पास नेमत है और वो हमारे पास नहीं है ویسے میں دعا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نعمت جنت میں دے دے.
جی کہہ سکتے, جنت میں تو مل ہی جائے گی, پر کوئی ایسی نعمت ہونا کہ جو جنت میں بھی لینی ہے آپ نے. آپ یہ کہیں اللہ مجھے, آپ دیکھیے جب تک زندہ ہے آپ مانگیں کہ اللہ مجھے دے, میں نے لینی ہے, دنیا میں بھی دے. یہ کہیں کہ اللہ اگر یہ نعمت میرے نصیب میں نہیں تو کر دے, اور اگر یہ میرے حق میں اچھی نہیں تو اس کو اچھا کر کے دے دے. اور سیدھی سی بات ہے, صبر کر لیں. کیا بڑی بات ہے, ایک عورت تھی بیمار ہوتی تھی, اس کا ستر کھل جاتا تھا, مرگی کا دورہ اس کو پڑتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, کہنے لگی کہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میری بیماری دور ہو جائے. تو آپ نے کہا تو یہ دعا کرانا چاہتی کہ بیماری دور ہو جائے, یا یہ دعا کرانا چاہتی کہ اس بیماری کے بدلے میں تجھے جنت مل جائے. یعنی نبی کی زبان سے خوشخبری مل رہی ہے کہ تجھے اس بیماری کے بدلے جنت ملے گی. کہتی اچھا, پھر اللہ کے نبی میرے لیے جنت کی دعا کر دیں, بس ساتھ یہ دعا کر دیں کہ میرا اس کی وجہ سے ستر نہ کھلے, کہ میں کبھی میرا کپڑا نہ ہٹ جائے جسم سے. تو آپ نے اس کے لیے وہ دعا کر دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ دونوں ہی چیزوں میں اجر ہے, جس اینگل سے آپ اپنے آپ کو لیتے ہیں. جی آپ ربیع.
جی اساتذہ, یہ اسی چیز پہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور بہت ضرورت بھی ہے اس چیز کی, اور اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں اور وہ لائک دیر ہو رہی ہے یا کچھ بھی, تو اس پہ صبر کرنا بہتر ہے یا اسے مانگتے رہنا بہتر ہے؟
صبر کے ساتھ مانگتے رہے. دیکھیے کوئی چیز نہیں ہے نا, تو آپ اس وقت اگر اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے نا کہ رضیت باللہ ربا, اے اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں, بالقدر خیری و شری من اللہ, اللہ خیر شر میرے پاس تیری طرف سے, آپ کا دل خود ہی مطمئن ہوگا یہاں سے. بلکہ آپ خود کو پرکھیں کہ آپ کتنے صابر ہیں. بعض جب ہم کہتے ہیں ہم صبر کر رہے ہیں لیکن صبر نہیں آ رہا. اور میں نے واقعی لوگوں کو جتنا بے چین اولاد کی دولت نہ ہونے پہ دیکھا ہے نا, شاید علم کی دولت نہ ہونے پہ نہیں دیکھا. میں نے نہیں لوگوں کو تڑپتے دیکھا کہ لوگوں کے پاس اتنا علم ہے مجھے کیوں نہیں ملتا, لوگ اتنا صدقہ کرتے ہیں میں کیوں نہیں کرتی, لوگ تو اتنے روزے نفلی رکھتے ہیں میں کیوں نہیں رکھتی, لوگ تو اشاری کو بھی اٹھ کے فجر کے اوپر بھی مسجد میں جاتے ہیں میں کیوں نہیں جاتا. میں نے نہیں دیکھا اس پہ. حسد کریں گے بھی تو کس پہ کریں گے, دنیا کی دولتوں پہ کریں گے. تو اس کا طریقہ یہ کہ بزی کریں. ایک سمپل ساری باتوں کا علاج, اپنے آپ کو مصروف کر لیں. اور یہ سوچے چار دن کی دنیا ہے. بس آپ کہتے ہیں اولاد ہو, آپ کہتے ہیں ہاں اولاد اب ہو گئی تو اب ہم تو مر جائیں گے کچھ سال میں, تو بیچاروں کو ایسی یتیم چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ رہنے دے, ایسی پتہ نہیں کہاں دھکے کھائیں گے, پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کا بعد میں کیا ہوگا. اب آپ کو مجھے کسی کو نہیں پتا ہم نے ابھی 50 سال جینا ہے کہ 10 سال جینا ہے کہ 5 سال جینا ہے. خود کو تسلی دے دیں. اور جو جتنا اللہ سے مطمئن اللہ سے راضی ہے, یقیناً اللہ بھی اس سے راضی ہے. بس ایک خاص حد ہوتی ہے, نبیوں نے 80-80 سال کی عمروں میں بھی دعائیں کی. دعا کرنا نہیں چھوڑے لیکن نہ ملنے پہ پریشان نہ ہو. ود ان اسپونٹینیسلی خود کو مطمئن کر لیں. آپ کہتے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہو جائے گی, پھر فوراً آپ کو دکھتے ہیں سمٹمز کے نہیں, وہ آپ کہتے ہیں اوکے چلے کوئی بات نہیں ابھی اللہ کب نہیں آیا. تو بس آپ انشاءاللہ اللہ کی حکمتوں کو کے اوپر بات ڈال دیں گے تو اس سے زیادہ خیر ہوگی. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر, اتنا کافی اس کے لیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.